दृष्टि से सृष्टि सम्मेलन में आपका स्वागत है। आपके हृदय, मन और रोजमर्रा के जीवन में स्वर्णिम युग को जागृत करने के लिए आध्यात्मिक विवेक और कहानियाँ। एरिक भाई, ओम शांति ब्रजमोहन भाई, यह बहुत अच्छी बात है कि आप हमसे जुड़ पाए। ये वास्तव में हमारा सौभाग्य है और ड्रामा में बहुत अच्छी सीन है कि अगले आधे घंटे तक आपके साथ रहने का मौका है और स्वर्णिम युग के विषय की जांच करेंगे। तो इस वेबिनार में आपका स्वागत है। आप संपूर्ण ब्राह्मण परिवार से बात करेंगे। आपका स्वागत है। सबकी तरफ से आपको ओम शांति। ब्रजमोहन भाई, सभी को ओम शांति। एरिक भाई, जैसा कि आप जानते हैं कि हम स्वर्णिम युग की जानकारी की खोज कर रहे हैं, भविष्य को देख रहे हैं। बाबा हमें बहुत बहुत वर्षों से कह रहे हैं कि स्वर्णिम युग आ रहा है, स्वर्णिम युग आ रहा है। हम ताज्जुब कर रहे हैं कि हम वहां कैसे पहुंचेंगे। तो स्वर्णिम युग के बहुत से पहलुओं के बारे में आपसे जानना है, लेकिन सबसे पहली बात जो आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने ज्ञान के शुरुआत के दिनों में, आप युवा थे, वह बहुत बहुत पहले की बात है। स्वर्णिम युग का आपका अनुभव क्या है? जब आपको स्वर्णिम युग के बारे में पहली बार बताया गया तो कैसा था? ब्रजमोहन भाई, बाबा हर बात को तुलनात्मक तरीके से बताते हैं। जब मुझे पूरे चक्र का ज्ञान दिया गया तो दो चरम सीमाओं को संगम युग पर मिलते हुए पाया। तो मुझे भी और सभी को कलयुग के बारे में भली प्रकार ज्ञान है, यहाँ क्या हो रहा है। तो जब मुझे स्वर्णिम युग के बारे में बताया गया तो मेरे लिए उसे समझ पाना सरल था। केवल इतना ही ज्ञान था कि हम कलयुग का विवरण घंटों तक दे सकते हैं, लेकिन अगर आप मुझे स्वर्णिम युग का विवरण देने के लिए कहेंगे, जो बहुत संपूर्ण है, असल में वहाँ बहुत कुछ बिना शब्दों के ही हो जाता है। इसीलिए स्वर्णिम युग की एक छोटी सी घटना का विवरण करना भी मुश्किल है। एरिक भाई, क्या आपको कोई ट्रांस का अनुभव है, कोई साक्षात्कार, या आपके शुरुआती दिनों में योग में कोई विशेष अनुभव हुआ हो जिससे आपको स्वर्णिम युग का स्पष्ट अनुभव हुआ हो? ब्रजमोहन भाई, वास्तव में जब मैं ज्ञान में आया तो मुझे सेमी ट्रांस का अनुभव होता था। जब मैं गहरे ध्यान में होता था तो मैं अपने शरीर को पूर्णतया भूल जाता था और महसूस करता था जैसे मैं शरीर से बाहर हूँ। उन पलों में मुझे अलग प्रकार के और सृष्टि चक्र के विभिन्न समयों के साक्षात्कार या अनुभव होते थे और स्वर्णिम युग भी उनमें से एक था। लेकिन बाद में ब्रह्मा बाबा ने स्वयं मुझे ट्रांस में नहीं जाने के लिए कहा। बाबा ने कहा, क्योंकि सभी बातों को ज्ञान के आधार से समझना बेहतर है बजाय कि साक्षात्कार में देखने के। और बाबा यह भी कहते थे कि अगर कोई आत्मा ट्रांस में जाने के बाद समझती है तो वह नंबर वन नहीं बन सकती, बजाय इसके उनका नंबर बाद में आता है। बाबा कहते थे कि मातेश्वरी माँ, जिसने कभी कुछ नहीं देखा, एक चमकता हुआ सितारा भी कभी साक्षात्कार में नहीं देखा, वह नंबर वन में चली गई। क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने कहा, मुझे थोड़े ट्रांस के अनुभव होते थे, उस दौरान मैं सेमी ट्रांस में जाता था। मुझे कुछ साक्षात्कार हुए हैं, या आप दिव्य समझ कह सकते हैं, जो मुझे ज्ञान से नहीं हुए लेकिन किसी प्रकार के मानसिक चित्रण या विजुअलाइजेशन से हुए।
But through certain type of visualization.
एरिक भाई, क्या आपको उन साक्षात्कारों में से कुछ याद है? क्या आपको जो कुछ याद है उसमें से कुछ हमें बताएंगे? ब्रजमोहन भाई, यह बहुत बहुत पहले हुआ था, लेकिन मैं याद करने की कोशिश करूंगा। मुझे ऐसा महसूस होता था कि महलों में ही कम गहरे झरने बहते थे और वे बहुत सतही थे, और आप जैसे उन साफ पानी के नीचे पत्थर देख सकते हैं, ऐसे ही उन कम गहरे झरने जिनमें पूर्णतया स्वच्छ पानी बहता था और पत्थरों के स्थान पर विभिन्न रंगों के रत्न दिखाई देते हैं। यह एक साक्षात्कार है जो मुझे सही तरीके से याद है, और मुझे याद है कोई भी रत्न काले रंग का नहीं था, कुछ सफेद थे, कुछ विभिन्न रंगों के थे, कोई काले रंग का रत्न नहीं था, और वे इतने कम गहरे झरने थे कि आप उसको पार करके दूसरे क्षेत्र में जा सकते हैं। यह एक अनुभव मुझे स्पष्ट रूप से याद है। और दूसरा, मैं बहुत सुंदर पंछी देखा करता था, सबसे स्पष्ट मोर दिखाई देते थे, फिर बहुत रंगों की तितलियां, विभिन्न रंगों की चिड़िया, और बाबा मुरली में कहते थे कि पंछी देवताओं के बच्चों के सामने खेलते हैं। तो बाबा से यह ज्ञान सुनने के बाद मैं देखता था कि चिड़िया और दूसरे पंछी देवताओं के बच्चों के समक्ष विभिन्न खेल दिखा रहे हैं।
Of different colors, and Baba used to say in Murlis that the birds would play in front of the deity children. So those visions also, I after learning that knowledge from Baba, I used to have that the sparrows and others, they are showing their sort of tactics or play in front of the
एरिक भाई, तो ये सेमी ट्रांस के अनुभव आपके लिए प्रेरक थे, आपके व्यक्तिगत पुरुषार्थ के लिए, क्योंकि उस समय आपको बहुत नशा चढ़ाते थे। ब्रजमोहन भाई, अभी आपसे बात करते हुए मैं याद कर रहा हूँ कि वहाँ के पेड़, उनकी मुड़ी हुई शाखाएं नहीं थी, उनमें सीधी शाखाएं और सीधे तने होते हैं, और वहाँ खुशबू भी होती है। मैंने देखा कि कुछ दिव्य बच्चे बगीचे में बैठे हैं, मखमली घास है, जैसे यहाँ मखमल के कालीन होते हैं, तो वे वहाँ बैठे थे, और अभी मुझे साक्षात्कार हुआ ही था, और मैंने बहुत सुंदर खुशबू का अनुभव किया। वह दिव्य खुशबू उन फूलों से आ रही थी जो आसपास खिले थे, गुलाब के फूल थे, विभिन्न रंगों के फूल थे, और जैसे बाबा कहते हैं कि झरनों का पानी विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों से गुजरता है, तो वह भी मुझे दिखाई दिया। बाबा कहते हैं दूध की नदियां बहेंगी, फिर बाबा कहते थे सच में दूध नहीं, बल्कि पानी बहुत स्वास्थ्यवर्धक होता है, पानी ही दूध की तरह होता है, और यहाँ दूध पानी की तरह है, कुछ ऐसा। तो मैं देख सकता था कि झरनों के पानी में आरोग्यकर या जड़ी बूटी के गुण होते हैं, यह मुझे याद है। अब आपका सवाल कि उस सेमी ट्रांस में जाने पर मुझे कैसा लगता था, मुझे महसूस होता था कि मैं अधिक से अधिक समय वहाँ बिताऊं, क्योंकि मैं उन सुंदर दृश्यों को देखता था, तो मुझे महसूस होता था कि मैं भी उसका हिस्सा हूँ। फिर मैं अपने कलियुगी शरीर और कलियुगी परिस्थितियों को भूल जाता था, मुझे लगता था कि मैं भी वही हूँ, और उसके बाद बहुत लंबे समय तक आनंद का अनुभव करता था।
I felt a part of that, and I forgot my Kaliyugi body and Kaliyugi situation. I just felt I was also there. And after that, you know, I used to feel that joy or bliss for long durations.
एरिक भाई, वाह, ऐसा लगता है कि ऐसा बहुत पहले हुआ था और उस अनुभव की भावना को फिर से जागृत किया है, ऐसा ही है ना ब्रजमोहन भाई? हाँ, और मुझे यह भी याद आता है कि मुझे महलों का भी साक्षात्कार हुआ था और महलों में एक बात पर मेरा ध्यान गया कि सभी एक मंजिला थे, कोई भी बहु मंजिला नहीं थे, किसी भी महल में दो मंजिल नहीं थी, लेकिन उनमें बहुत सुंदर गुंबज थे। उन गुंबजों में हीरे जवाहरात जड़े थे, उसमें बहुत सुंदर प्रकाश प्रवाहित हो रहा था। और जैसे आप जानते हैं कि बाबा विमानों के बारे में, पुष्पक विमानों के बारे में अलग तरह से बहुत सुंदर बताते हैं, उनको आप छोटे हवाई जहाज कह सकते हैं, जो कि किसी मशीन से कार्य नहीं करते बल्कि विचार शक्ति से चलते हैं। तो मैं विमानों को भी देखता था जिसके एक बैठ सकता था या दो बैठ सकते थे, लेकिन एक बात मैंने देखी कि किसी भी विमान में चार से अधिक सीटें नहीं थी। यह भी मुझे स्पष्ट रूप से याद है और मैं उन विमानों को देखने का आनंद लिया करता था। वे पूर्णतया ध्वनि रहित थे, बिल्कुल दिव्य। और जैसे कि पक्षी चारों ओर से उड़ते हुए इकट्ठे होते हैं, वैसे सब प्रकार की पिकनिक आदि भी होती थी। एरिक भाई, यह बहुत अच्छा है और मुझे मालूम है आपका मन और बुद्धि हर बात को गहराई से समझना चाहता है और आप बाबा के लिए बहुत मंथन करते हैं और लिखते रहे हैं। जब आप उन साक्षात्कारों के बारे में सोचते हैं, तो क्या आपको कोई सवाल उठता था कि कैसे कोई विमान ऐसे उड़ सकता है केवल विचार शक्ति से? क्या कोई ऐसा समय आया जब आपने इस बारे में विचार करना आरंभ किया हो कि घास कालीन के जैसी कैसे हो सकती है, जैसा आप कह रहे थे? क्या उस बारे में आपने कभी मंथन किया? ब्रजमोहन भाई, हाँ, जब बाबा ने मुरलियों में सत्युग के बारे में बताया और कहा कि वहाँ पत्ते हिलेंगे और संगीत उत्पन्न करेंगे, तो इन मुरलियों को सुनने के बाद जब विचारों के द्वारा स्वर्णिम युग में मेरी अगली यात्रा हुई, तो मैंने सच में महसूस किया कि मधुर समीर बह रही है और पत्ते हिल रहे हैं और बहुत सुंदर संगीत की ध्वनि सुनाई दे रही है। मैं उसमें उसे महसूस करने के लिए मैं अधिक से अधिक वहाँ रहना चाहता था। और एक बात विशेष तौर पर उल्लेखनीय है कि वहाँ कुछ भी बहुत तीव्र गति से नहीं हो रहा था, सब कुछ नैसर्गिक तरीके से धीरे धीरे प्राकृतिक रूप से हो रहा था। तो बाबा कहते थे वास्तव में सत्युग होगा, मैं आपको ये साक्षात्कार करवा रहा हूँ, आपने कई बार इसको जिया है, यह अभी फिर से आ रहा है, लेकिन उसका आह्वान करने के लिए, वहाँ जाने के लिए, उमंग उत्साह के लिए मुझे लगता था कि ऐसे और भी साक्षात्कार होने चाहिए। तो जब बाबा ने मुझे ट्रांस में जाने से रोक दिया, तब भी मैं योग में कुछ समय इन अनुभवों में कि स्वर्णिम युग कैसा होगा, इस प्रकार मंथन करता था। एरिक भाई, इससे पहले कि बाबा ने ये सेमी ट्रांस का पाठ समाप्त किया, क्या आपको देवताओं की विशेषताओं को जानने का अवसर मिला था कि एक सत्व प्रधान शरीर में रहना कैसा लगता है? जैसे बाबा कहते हैं, स्वर्णिम युग में गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, हमें बहुत हल्का लगता है, हम बिल्कुल भारी नहीं होते। क्या आपको इस बारे में और जानने का मौका मिला, उनकी आंखें, उनकी मुस्कुराहट आदि? ब्रजमोहन भाई, हाँ हाँ, मैं देखता था सबसे पहले उनके चेहरे बहुत खास और मासूमियत से भरपूर थे। उनकी त्वचा का रंग चमकते हुए तांबे के जैसा था और सबसे दिलचस्प उनकी आंखें थी, वे चुंबकीय आंखें थी। अगर आप उनकी ओर देखते हैं और अगर उन्होंने आपको देख लिया तो आप केवल स्तब्ध खड़े रह जाएंगे। आप अपने विचारों को भी थोड़ा हिला नहीं पाएंगे। बहुत चुंबकीय नेत्र और एक छोटे बच्चे देवता और बड़े देवता के मासूमियत से भरे चेहरे में कोई खास अंतर नहीं था। और दूसरी बात मैंने देखी कि देवी और देवताओं एक ही समान दिखते थे, वे एक दूसरे से भिन्न नहीं लगते थे। तो मैं महसूस कर रहा था न केवल स्त्री पुरुष एक जैसे थे बल्कि उम्र के हिसाब से भी। बाबा ने कहा है कलयुग के शरीर से दुर्गंध आती है लेकिन देवताओं के शरीरों से सुगंध आती है। तो वास्तव में मुझे महसूस हुआ कि सुगंध आ रही है, एक विशेष प्रकार की सुगंध उनके शरीरों से आ रही थी। तो आप उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं और उनके समीप रहने की कोशिश करते रहते हैं।
बट एज वाइज ऑल्सो एंड व्हेन बाबा सेड दैट द बॉडीज ऑफ आयरन एजेस पीपल गिव ऑर्डर एंड द बॉडीज ऑफ द डीटीज गिव फ्रेग्रेंस सो आई रियली फेल्ट लाइक दे हैड फ्रेग्रेंस कमिंग ए टिपिकल टाइप ऑफ वेरी attractive type of fragrance coming out of their bodies so that you will feel like being attracted by them and trying to be close to them like that.
Eric bhai, और संबंधों के बारे में आपको क्या याद है? क्या इस बारे में आपको कोई समझ मिली? हम कैसे एक दूसरे से मिलते हैं, हम हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, अर्थात देवताओं के बीच किस प्रकार का व्यवहार होता है? ब्रजमोहन भाई, मुझे कोई अधिक साक्षात्कार नहीं हुए हैं, 30 से अधिक नहीं हुए हैं, लेकिन जो मैंने समझा वह यह है कि वे बहुत कम बोलते हैं और मुझे लगता है उनका अधिकतर कार्य मानसिक संवाद से ही हो जाता था, आंखों से ही हो जाता था, प्राकृतिक गतिविधि, यही मुझे महसूस हुआ। उन्हें कहना नहीं पड़ता था कि यह होना चाहिए। अगर वे इकट्ठे हो रहे हैं तो वे प्राकृतिक रूप से स्वयं ही इकट्ठे हो जाएंगे। और अगर आप उन्हें किसी सभा में देखते हो तो किसी को कहां बैठना है वह स्वतः ही हो जाता था। बड़े एक दूसरे के करीब आ रहे हैं तो बच्चे भी ऐसा ही करेंगे। मेरा अर्थ है ऐसा है कुछ, सब कुछ स्वतः ही होता है। यह मुझे महसूस हुआ कि उन्हें कुछ करने के लिए कुछ कहने की आवश्यकता नहीं थी, जैसे कि एक स्वाभाविक संवाद होता है। अगर आप तुलना करना चाहते हैं तो बिल्कुल जैसे पक्षियों में होता है। मैंने आसमान में बहुत सुंदर पंछियों को देखा। आजकल हम उन्हें स्वर्ग के पंछी कहते हैं, आसमान में ऐसे स्वर्गीय पंछी और एक बहुत दमकती हुई पृष्ठभूमि और सुंदर रचना में थे। फिर वे अपने स्थान पर चले जाते थे, लेकिन अपनी सुंदर बनावट में ही वे ऐसा कैसे करते हैं? ये प्राकृतिक सहज रूप का संवाद है। इसी प्रकार धरती पर देवताएं भी ऐसा ही करते हैं, सब कुछ सहज रीति से घटित हो जाता है। अब हम मनुष्यों के पास तो भाषा की शक्ति है, बोल सकते हैं, लेकिन शायद अगर हम जानवरों से तुलना करें तो वे बोलते नहीं हैं, किसी प्रकार की आवाज करते हैं और सहज भाव से गतिविधि करते हैं। अगर आप हाथियों के झुंड को देखें, छोटे बड़े सब होते हैं, वे सहज भाव से चलते फिरते हैं, सहज भाव से पानी पीने जाते हैं। इसी प्रकार से मुझे समझ में आया, बेशक वह बात करने की टॉकी वर्ल्ड है, फिर भी वे मुश्किल ही बात करते हैं, होठों को थोड़ा ही हिलाते हैं। मैंने कभी कोई आवाज नहीं सुनी। एरिक भाई, यह बहुत रोचक निरीक्षण है, लेकिन उसी समय वे बहुत कार्य सिद्धि भी प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि वहाँ संपूर्ण जीवन का प्रवाह है। केवल खड़े होकर मुस्कुरा नहीं रहे, पूरा जीवन और गतिविधियाँ हैं। यह बहुत रोचक बात है। एक सवाल ब्रिजमोहन भाई, हम जानते हैं ये साक्षात्कार जो ज्ञान हमें बाबा दे रहे हैं उससे मिलान करता है। कभी कभी बाबा कहते हैं कि वे व्यक्ति के विश्वास अनुसार साक्षात्कार कराते हैं। अगर किसी की आस्था हनुमान में है तो उसे हनुमान का साक्षात्कार हो जाएगा। आप क्या सोचते हैं, कितने साक्षात्कार बाबा ने करवाए या ड्रामा अनुसार, लेकिन कितने? आप क्या सोचते हैं कि साक्षात्कार संपूर्ण वास्तविकता का एक हिस्सा भर थे? इसी प्रकार जैसे जब यज्ञ ने बाबा को अनुभव करना आरंभ किया तो शुरुआत में ऐसे नहीं था कि वह ज्योति बिंदु है। बाबा की संपूर्ण समझ प्राप्त करने के लिए बहुत वर्ष लगे। ऐसे आपको लगता है कि स्वर्णिम युग के साक्षात्कार भी वास्तविकता का एक छोटा हिस्सा है और शायद बहुत कुछ और भी प्रत्यक्ष होना भी बाकी है? ब्रिजमोहन भाई, वास्तव में इसलिए ही शायद बाबा ने मुझे ट्रांस और सेमी ट्रांस में जाना बंद करवा दिया, क्योंकि साक्षात्कारों का अलग अर्थ ही हो सकता है। बाबा ने कहा है कि एक बच्चा जो मंथन करता है वह स्वयं ही इस बात की कल्पना कर सकता है कि कैसा होगा, लेकिन इन सब से मैंने महसूस किया कि इस संसार का एक वर्ष, वैसे तो यहाँ उम्र कम होती है, वहाँ जैसे कि एक मिनट था। मुझे लगा कि वे बहुत पारंगत और निपुण थे। जो कुछ भी हम एक वर्ष में करते थे, हम कुछ भी करने के लिए कितना विचार कर, कितने शब्दों का प्रयोग करते हैं, वहाँ सब कुछ स्वतः ही हो रहा था, क्योंकि सब कुछ समरसता में था, समय, स्थान, कार्य करने की विधि, सब कुछ। तो इसका मैंने आनंद लिया, इसने मुझे उत्साह से भर दिया। हम सब में वे विशेषताएं होनी चाहिए। अगर अभी भी वे हम में हैं, तो वे हमारे संपूर्ण दृष्टिकोण में बदलाव ले आएंगे। एरिक भाई, सिर्फ आपको सुनना ही इतना मनभावन है, निसंदेह वह स्वर्णिम युग है। क्या कभी आपको अचंभा हुआ कि कैसे होगा, क्योंकि वह जो कुछ भी हम यहाँ देखते हैं उससे 100% विपरीत है। भौतिक रूप से भी यह कैसे संभव होगा? बाबा कहते हैं सैकड़ों पंछी आएंगे लेकिन गंदा नहीं करेंगे, जानवर जानवरों को नहीं खाएंगे, भूमि पर खून का एक कतरा भी नहीं गिरेगा। क्या कभी आपने मंथन किया है? वहाँ इतनी उत्कृष्टता की प्राकाष्ठा कैसे होगी? ब्रिजमोहन भाई, मुझे लगता है कि वहाँ कुछ भी व्यर्थ नहीं है और इसका आरंभ विचारों की व्यर्थता की गैरहाजिरी से हुआ। देवता वही सोचते हैं जो करना होता है, और जो कुछ करना होता है वही विचार उनके मन में आता है। वे बहुत विचार उत्पन्न नहीं करते, फिर उन विचारों को अल्प सूची बनाएं, फिर दोबारा से सोचें कि क्या करना है। इसलिए मैंने अति संक्षेप में कहा कि अनुभव यही था, जो भी हम एक वर्ष में यहाँ करते हैं वह स्वतः सहज हो रहा था। कारण यह था कि जो भी मैंने मंथन के बाद बहुत बार बताया भी है, जो कुछ भी वहाँ होता है वह सही समय पर होता है, सही स्थान पर होता है, सही विधि से होता है। तो कुछ भी संपूर्णता से किया गया तो अपूर्णता की कोई गुंजाइश नहीं रहती, और वह एक संपूर्ण संसार है। प्रत्येक वस्तु प्रकृति समन्वय में है, तो सब कुछ, सारी परिस्थितियाँ, अवस्था सब अनुकूल है, समय और स्थान सब एक रस है। आजकल बहुत प्रकार के विज्ञान हैं, वास्तुकला है। कुछ लोग कहते हैं कि अपने घर का दरवाजा सूर्य की ओर रखें, और भी कई ऐसी बातें, लेकिन वहाँ सब कुछ बहुत स्वाभाविक होता है। तो तब प्रकृति का यह स्वभाव है तो मानव का स्वभाव भी परिपूर्ण है। फिर मैं सोचता हूँ कि यह सब संभव है। तुलनात्मक देखें आज का जीवन, हमारे उत्कृष्ट प्रयास के बावजूद क्या होता है? वहाँ हर बात सही समय पर होती है, यहाँ अक्सर समय गलत होता है। अगर समय ठीक है तो स्थान ठीक नहीं है, फिर अगर दोनों ही ठीक हैं तो विधि में समस्या हो जाती है। परिणाम स्वरूप अत्यंत अंतर देखने को मिलता है। हम देखते हैं कि किसी को भी कुछ भी कभी भी हो सकता है। तो अब यह परिस्थिति है, कुछ भी हमारे नियंत्रण में नहीं है, तो इसीलिए मैंने उसका आनंद लिया। जब बाबा कहते हैं ड्रिल करो, मैंने अवस्था में मानसिक रूप से अधिक रहने का प्रयास किया, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि उस दौरान इस संसार से मेरा संपर्क पूर्णतया टूट जाता था और मुझे वापस आने के बाद भी बहुत स्वर्गीय और दिव्य लगता था। बाबा ने कभी नहीं कहा कि कलयुग की दुनिया के बारे में विचार सागर मंथन करो जिसमें हम रह रहे हैं, तो इससे भी एक प्रकार से मदद मिलती है वर्तमान परिस्थितियों से दूर होने के लिए। यह सब कुछ बहुत रोचक और उपयोगी भी है।
So that is why I enjoyed that, and I try even now when Baba says you do what you call exercise, mental exercise, I try to stay more in that period mentally, because I feel like, you know, everything of this world is totally cut off for that period of time, and I feel so heavenly and divine when I come down also. To the Baba never says you churn about Iron Age or something like that. We are very much living it. So that also helps in a way to remain off from the present day situations while in those situations. So all that is very interesting and useful also.
यह बहुत आकर्षक है, क्योंकि हम इसका आह्वान सेमी ट्रांस के माध्यम से कर रहे थे। अब इतने दशकों के बाद आज स्वर्णिम युग से आपका क्या संबंध है? आप कह रहे थे कि आप वहां जाने की कोशिश करते हैं। क्या आपके आध्यात्मिक जीवन में यह आज भी ताजा है? क्या यह आज भी बड़ा हिस्सा है? क्या ये थोड़ा धुंधला पड़ रहा था तो हम उन पुरानी यादों को ताजा कर रहे हैं? वर्तमान समय स्वर्णिम युग से आपका क्या संबंध है? आप उस बारे में क्या सोचते हैं? कितना चिंतन करते हैं या इस ओर ध्यान देते हैं? ब्रजमोहन भाई, आपको मैं यही बताने की कोशिश कर रहा था कि वे शुरुआती अनुभव थे जिन्होंने मुझे उस स्वर्णिम युग के योग्य बनने के लिए प्रेरणा दी। लेकिन जैसा कि बाबा हमेशा कहते हैं कि आप विचार सागर मंथन करो, स्वदर्शन चक्र फिराओ, प्रतिदिन जब मैं योग में बैठता हूँ तो मैं अपने समय को बांट लेता हूँ, कुछ समय परमधाम में, आत्मिक रूप में, शांति में, और कुछ समय स्वर्णिम युग में, और फिर फरिश्तावस्था में, और फिर संगम युग पर प्रतिदिन मैं याद करता हूँ। तभी मैंने कहा कि मैं उस अवस्था का अनुभव करने के लिए अपने समय को बांट लेता हूँ, क्योंकि वह इतनी आनंदमयी अवस्था है। मुझे अधिक से अधिक वहाँ रहना अच्छा लगता है। और फिर बाबा कहते हैं कि वह आ रहा है, उसके चिन्ह दिखने लगते हैं और हम उसके करीब आ रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ। इसलिए दूसरी बातों को जल्दी से समाप्त करने की कोशिश करता हूँ और मानसिक रूप से उस समय में रहने का प्रयास करता हूँ। एरिक भाई, क्या आप महसूस करते हैं कि आप वहाँ जाने के लिए तैयार हैं? ब्रजमोहन भाई, हाँ, मेरी इच्छा है कि मैं तैयार हो जाऊं। केवल एक ही अवरोध लगता है, मेरी यहाँ के कलयुगी कर्तव्य या हिसाब किताब चुकतू करने या मेरे शरीर की समस्याएं नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि हमें अधिक से अधिक फरिश्ते रूप में रहना चाहिए। अभी हम स्वर्णिम युग में अपने मन से तो जा सकते हैं, लेकिन आत्मा नहीं जा सकती, लेकिन फरिश्ता स्वरूप में। तो मैं वही कोशिश करता हूँ और अपने मन में याद रखता हूँ कि वह कितना सुंदर समय था, जहाँ शरीर और मन पर भी किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता था। कोई परिस्थिति अनुकूल नहीं होती तो मैं उसका आह्वान करता हूँ, उसका अनुभव करता हूँ और उसका आनंद लेता हूँ, क्योंकि उससे मेरे विचारों को आरोग्य कर ऊर्जा मिलती है, जो इन साधारण परिस्थितियों को पार करने में सहायक होती है। जब मुझे बहुत गर्मी लगती है, बिजली नहीं होती एसी नहीं होता तो मुझे समस्या का अनुभव नहीं होता, तो मैं अपने को स्वर्णिम युग में महसूस करता हूँ। मानसिक रूप से मैं अपनी वर्तमान अवस्था से दूर हो जाता हूँ और मैं स्वर्णिम युग के सुंदर नजारों का अनुभव करता हूँ। इसी प्रकार करने की मैं कोशिश करता हूँ।
ब्यूटीफुल क्लाइमेट ऑफ द गोल्डन एज लाइक दैट आई ट्राई टू डू दैट।
एरिक भाई बहुत अच्छा, हमें प्रेरणा मिल रही है कि अधिक से अधिक आपको सुने। ब्रजमोहन भाई, अगर आपको ठीक लगे तो आपसे जल्दी से कुछ तकनीकी सवाल पूछना चाहता हूँ, और सामान्य से यह इंटरव्यू थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन बाबा ने मूल्यों में कई बातों के संकेत दिए हैं और मैं आपसे स्वर्णिम युग के बारे में जल्दी से एक क्विज शो की तरह सवाल पूछना चाहता हूँ। सबसे पहले परिवर्तन के दौर के बारे में, आपकी इस बारे में क्या समझ है? इस वर्तमान संसार से नए संपूर्ण संसार में हम कैसे जाएंगे? हाँ, हम जानते हैं विनाश होगा, लेकिन आप क्या समझते हैं? क्योंकि बाबा कहते हैं बहुत से वैज्ञानिक आएंगे, स्वर्णिम युग में विज्ञान को लेकर आएंगे, लेकिन फिर वे परमधाम चले जाएंगे। क्या कृष्ण का जन्म कलयुग में होगा वह स्वर्णिम युग में, जब सब विनाश हो चुका होगा? यह इस परिवर्तन दौर के बारे में आपका विवेक क्या कहता है? ब्रजमोहन भाई, भाई व्यक्तिगत तौर पर मुझे महसूस होता है ये संदेहास्पद अपरिभाषित क्षेत्र है। इस बारे में मैं भी सोचता था और सीधे मम्मा बाबा से सवाल पूछा करता था। फिर मम्मा ने बताया, अज्ञान के जंगल में मत जाओ, क्योंकि मैं मम्मा से पूछता था अगर हर एक माँ बाप को केवल दो बच्चे हैं तो स्वर्णिम युग की जनसंख्या कैसे बढ़ेगी? आप कहते हैं केवल दो बच्चे होते हैं तो जनसंख्या बढ़ेगी कैसे? क्योंकि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। तो मम्मा ने कहा इन सब बातों में मत जाओ, कुछ समय बाद वहाँ तीन भी होंगे। फिर थोड़े समय बाद मम्मा बाबा दोनों ने बताया कि इन अपरिभाषित क्षेत्रों में मत जाओ, और हाल ही में मेरी इन भावनाओं की पुष्टि हुई कि किसी भी बात के बहुत विस्तृत विवरण में जाने से उलझन पैदा हो जाती है, और विशेष तौर पर जब आप संपूर्ण ब्राह्मण परिवार से बातें कर रहे हैं तब हम अपनी अवस्था अनुसार ही उत्तर दे रहे होते हैं, और दूसरे भी ब्राह्मण होंगे जो उलझन में आ जाएंगे। उदाहरण के लिए मुझे याद है मैं ऑस्ट्रेलिया गया था, वहाँ भाई लोग मुझे भाइयों के मकान में लेकर गए और मुझसे पूछा कि कोई भी डबल फॉरेनर ट्रांस मैसेंजर क्यों नहीं है, तो यह सवाल उन्होंने मुझसे पूछा। मुझे उत्तर मालूम नहीं था, लेकिन अचानक मुझे ख्याल आया कि इसमें डबल फॉरेनर या भारतवासी की बात नहीं है। जब बाबा ने शरीर छोड़ा तो यह निर्णय लिया गया था कि अब कोई भी ट्रांस मैसेंजर नहीं होंगे, क्योंकि उससे उलझन या अस्पष्टता पैदा हो जाती है, और इसीलिए ना तो भारत से ना किसी दूसरे देश से ट्रांस मैसेंजर है। इस बात का मुझे ध्यान आ गया। इसी प्रकार जो सवाल आप पूछ रहे हैं वैसे आपके पूछने में कोई खराबी नहीं है, लेकिन इनसे समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। वैज्ञानिकों के लिए भी बाबा ने कभी नहीं कहा कि वैज्ञानिक आएंगे और स्वर्णिम युग में कुछ सहयोग देंगे फिर वापस परमधाम चले जाएंगे। नहीं, बाबा ने कहा है कि बाबा प्रत्येक आत्मा को अंक देते हैं, चाहे वे बहुत अच्छे वैज्ञानिक हैं या केवल पवित्र वैज्ञानिक नहीं। लेकिन वैज्ञानिक तो न्यूक्लियर बॉम्ब्स भी बना सकते हैं, लेकिन वैज्ञानिक जो कि कल्याणकारी स्वभाव के होंगे वे आएंगे, और वे भी स्वर्णिम युग का हिस्सा होंगे। वे भी देवताई जीवन गुजारेंगे, लेकिन वे राजाई पद पर नहीं होंगे, तो हमेशा ही अलग अलग मते होंगी। तो मैं सलाह दूंगा कि हम इस प्रकार के विस्तार में ना जाएं। मैं अपने स्वयं के व्यक्तिगत उत्तर आपको दे सकता हूं, लेकिन शायद उनसे लोगों में अधिक उलझन पैदा हो जाए और उन्हें आगे और सवालों की आवश्यकता महसूस होगी, और इस इंटरव्यू में केवल मैं ही बात कर सकता हूं, वे केवल सुनेंगे, वे मुझसे पूछ नहीं सकते। एरिक भाई, यह तो इस इंटरव्यू को छोटा बनाने का बहुत विवेकी तरीका है ब्रजमोहन भाई। रिजवान भाई, नहीं नहीं, एरिक भाई, नहीं नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं समझता हूँ आप क्या कह रहे हो, लेकिन विशेष रूप से पश्चिमी दिमाग, उनके पास कोई चुनाव नहीं है, लेकिन वे मंथन करके समझने की कोशिश करते हैं, ताकि उन्हें लगे कि वे किसी अंधविश्वास का अनुसरण नहीं कर रहे हैं। ज्ञान के कुछ पहलू वैसे भी उलझन पैदा कर देते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को उसका सामना करना पड़ता है, मंथन करना पड़ता है। ब्रजमोहन भाई, आप सही कह रहे हो भाई, लेकिन यह पश्चिमी समझ या दूसरा का इसका कोई प्रश्न नहीं है। बात यह है कि हाल ही में ब्रह्मा बाबा ने कहा है कि भविष्य में जब बच्चे बढ़ जाएंगे तो हमें और अधिक मकानों की आवश्यकता पड़ेगी, और इन सब के बारे में मैं सोच रहा हूँ। फिर आगे ब्रह्मा बाबा ने कहा, लेकिन शिव बाबा कहते हैं आप बस अपनी सूक्ष्म अवस्था को पाने का सोचो, इन बातों के बारे में नहीं सोचो। यह एक सप्ताह पूर्व की मुरली है, अब इसमें बहुत ज्ञान समाया हुआ है, क्योंकि उस समय यह सब करने का कोई स्रोत उपलब्ध नहीं था। तो बाबा ने कहा परिवर्तन करने की जिम्मेवारी मेरी है। तो मूलतः हमें समझना चाहिए कि मनुष्य मन में अगर आप सोचना आरंभ करें तो बहुत सी शंकाएं होंगी, बहुत खुदाई और अवलोकन होगा। उसके लिए भी उत्तर है, क्योंकि इस रेडियो एक्टिविटी से आप शराब को एक घंटे में तैयार कर सकते हैं, जिस काम के लिए पहले वर्षों लगते थे, सदियों पहले। इस प्रकार रेडियो एक्टिविटी से चीजों का संपूर्ण समय बदल गया है, और बहुत सी रेडियो एक्टिविटी होगी। फिर अगर आप इन बातों में जाते हैं तो सबसे बेहतर है मेरा रोल क्या है, मुझे एक बेहतर संसार के बारे में बताया गया है, मुझे उसके लिए अपनी बेहतरीन करना चाहिए, बाकी रचना के हाथों में छोड़ दें, क्योंकि यह बहुत बड़ा विषय है। और जैसे कि जादुई परिवर्तन, जैसे यह हमसे इतने वर्षों में अधिक अज्ञानता और आवरणों से आ सकता है, तो फिर भी बाबा जल्दी से हमारी सोच को बदल देंगे और हम ऊपर की ओर जाना प्रारंभ कर देंगे। इसी प्रकार यह बड़ा शो है, यह रचता का कार्य है। इसीलिए कृष्ण कैसे आए, कौन उसके माता पिता होंगे, यह सब रचता का कार्य है। तार्किक रूप से अगर मैं समझूं, हाँ, हम परिवर्तन के चिन्ह देखते हैं, किस तरह से यह घटित होगा। इन दिनों भी लोग कहते हैं केवल भगवान ही जानता है, तो इन बातों के लिए हमें कहना चाहिए भगवान जानता है, वह करेगा। अगर आप उसके उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे तो कभी भी हम अटक सकते हैं। तो यहाँ हम खुश हैं जब बहुत सी बातें तार्किक हैं और सही भी हैं, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं बाकी भी सब ठीक ही होगा। तो कुछ अपरिचित क्षेत्र हैं, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। एरिक भाई, मैं समझता हूँ, हाँ, आप सही कह रहे हो, लेकिन फिर भी कभी कभी हमें लोगों को इन मशहूर सवालों के जवाब देने पड़ते हैं कि स्वर्णिम युग में प्रजनन कैसे होगा, लोग प्रजनन कैसे करेंगे। बाबा ने अभी कहा है कि योग की शक्ति से होगा। एक मुरली में मैंने पढ़ा था, एक पुरानी अव्यक्त मुरली में बाबा कह रहे थे यह चूमने से होगा, वहाँ कोई काम विकार नहीं होगा, लेकिन ये चूमने से होगा। तो निसंदेह कभी कभी हम अचंभा करते हैं कि यह सब कैसे होगा। जब लोग हमसे पूछते हैं तो हम कह सकते हैं कि भगवान जानता है और हमें बाद में पता चलेगा, ये बाद में प्रत्यक्ष होगा। ब्रजमोहन भाई, भाई आप सही कह रहे हो, लेकिन स्वर्णिम युग स्वर्णिम युग है, और वहाँ के तौर तरीके इस कलयुग से पूर्णतया भिन्न होंगे। अगर अभी आप चूमने की और इस तरह की बातें करते हैं तो बहुत से ब्राह्मण सोचना आरंभ कर देंगे कि शारीरिक संबंध में आना विकार है, लेकिन चूमना ठीक है, क्योंकि हमें यह पवित्र विचार से करना है, तो क्यों न कोशिश करी जाए। तो बहुत सी बातें हो सकती हैं, तो इसलिए मैंने कहा अपरिपक्व मन। और जहाँ तक जनता को जवाब देने की बात है, यहाँ भी मेरा भिन्न मत है। मूल बात है कि क्या वे सारे लोग जिनको हम संबोधित कर रहे हैं, क्या वे सभी स्वर्णिम युग में आएंगे? क्या आप सोचते हैं कि अगर हम किसी भिन्न प्रकार की सूचना देने की कोशिश उन लोगों को कर रहे हैं जो हमारा लक्ष्य समूह नहीं है, यह उनके रुझान से ऊपर की बात है? आप उन लोगों को जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं जो कभी उस प्रक्रिया से पैदा हुए ही नहीं, तो क्या उनको राजी करना संभव होगा? नहीं, क्योंकि वे बाद में आते हैं। वे उस भिन्न समय में आते हैं जब कार्य का तरीका पूर्णतः बदल चुका होता है। तो उनका संदेह दूर करने का प्रयास करना अर्थात समय बर्बाद करना। लेकिन अगर स्वर्णिम युग की आत्माएं हैं तो वे किसी तर्क के बिना ही तत्काल ही स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि वे सोचेंगे कि शरीर और आत्मा दोनों को ही पावन बनना है और संसार को संपूर्ण होना है। या दिव्य जन्म है तो दिव्य जन्म दिव्य विधि से ही होगा। तो इस प्रकार मैं कह रहा हूँ, लेकिन कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारा ज्ञान तार्किक रूप से सभी लोग स्वीकार कर लें। मुझे नहीं लगता यह सिर्फ उनको ही समझ में आएगा, उसमें भी नंबरवार होंगे। त्रेता युग की आत्माएं उस परिस्थिति को ठीक से समझ नहीं पाएंगी कि 111 को क्या अवस्था थी, तो वे बहुत सुनियोजित हैं। जैसे उत्पादों में भी कुछ गुणवत्ता उत्पाद होते हैं, कुछ असाधारण उत्पाद होते हैं, ये कुछ लोगों द्वारा ही खरीदे और उपयोग में लाए जाते हैं जिनको वास्तव में ऐसा करना है। तो इसी प्रकार अगर हम देखें तो हम आम जन को कभी संबोधित नहीं करते। बाबा ने आम जनता को ऐसे कभी ज्ञान नहीं दिया है, और बाबा हमेशा कहते हैं ये केवल उस समय की आत्माओं को ही स्वीकार्य होगा। इसलिए मैं ऐसा कहता हूँ। एरिक भाई, मैं इसकी सराहना करता हूँ। मुझे मालूम था कि इन सवालों को पूछकर मैं एक संवेदनशील क्षेत्र में प्रवेश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है आपका स्पष्ट दृष्टिकोण जानना भी आवश्यक था। आपका उत्तर कि उन सवालों का क्या करना है, मैं सच में बहुत आभारी हूँ। ब्रजमोहन भाई, भाई मैंने भी स्वयं के लिए उन सवालों के उत्तर दिए हैं, क्योंकि मैं भी उनका सामना करता हूँ। लेकिन मैं जानता हूँ उन सवालों की सराहना या उनके जवाब दूसरों को आकर्षक नहीं लगेंगे। यह विचार है, क्योंकि प्रत्येक धातु का गलनांक विभिन्न होता है, इसलिए हरेक का यह भाग्य नहीं है। हम में से सभी ने ज्ञान को अपने तर्क से उस अवस्था से समझा है, तो मेरे पास उत्तर हैं, लेकिन वे उत्तर हर प्रकार के लोगों को आकर्षक नहीं लगेंगे, इसलिए वे उत्तर देने में मैं थोड़ा हिचक रहा हूँ। एरिक भाई, इसके बाद मैं आपको व्यक्तिगत रूप से फोन करूंगा। ब्रजमोहन भाई, हाँ हाँ एरिक भाई, ब्रजमोहन भाई अभी समाप्त करेंगे, लेकिन इस भविष्य दुनिया से स्वयं को एक सिधाई में रखने के लिए हमें किस बात पर ध्यान एकाग्र करना चाहिए? चलिए तकनीकी सवालों को एक तरफ छोड़ देते हैं। आपके अनुसार किस बात पर ध्यान एकाग्र करना चाहिए? जैसे बाबा रचता के रूप में हैं, तो हमें किस बात को सोचना चाहिए? ब्रजमोहन भाई, भाई ये बहुत अच्छा सवाल है और व्यवहारिक है। मैंने पाया है कि केवल और असली बाधा या विघ्न, जो भी आपका कहना चाहे कह सकते हैं, वह है अपने संस्कारों का परिवर्तन। तार्किक रूप से, बुद्धि से हमने कुछ बातों को समझा है, लेकिन उन बातों को महसूस करने में रास्ते में जो बाधा है या विघ्न आता है, वह है हमारे संस्कार जो हमने बहुत समय से बनाए हैं। इसलिए समझना और जानना कि यह होना चाहिए, यह नहीं होना चाहिए, मुझे यह करना चाहिए, मुझे यह नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए बाबा कहते हैं सदा आत्म अभिमानी बनो। हम इसे भली भांति जानते हैं, अभ्यास भी कर रहे हैं, फिर भी किस कारण से हम वह भूल जाते हैं? यह बचे हुए संस्कार, तो हमें संस्कारों के परिवर्तन पर ध्यान देना चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं याद योग ही तरीका है, केवल यही तरीका है संस्कारों को बदलने का। और द्वापर युग से संस्कार, उन्हें हम अपवित्र कह सकते हैं। इसका अर्थ है हम वह नहीं करते जो हमें करना चाहिए। इसलिए संस्कार परिवर्तन, बाबा ने कई तरीके बताए हैं, कोई कट एंड ट्राई तरीका नहीं है। हमें उन सभी विधियों को अपनाना होगा, आसान, मुश्किल, सबसे बेहतर, बीज रूप अवस्था का अभ्यास कितनी आसानी से कहने में आता है, लेकिन उस अवस्था में रहना, तो उस पर हमें ध्यान देना चाहिए।
Strong ones, the best ones, to be in seed state, that is easily said, but to remain in that. So that we should focus.
Eric Bhai. और हम जानते हैं कि यज्ञ 80 सालों से चला आ रहा है। 80 सालों से बाबा हमारे उन संस्कारों को बदलने को कह रहे हैं। कभी कभी अचंभा होता है कि और कितना समय लगेगा। ब्रजमोहन भाई, नहीं नहीं, इसे भी ठीक करने की आवश्यकता है। कुछ आत्माएं हैं जो अपने संस्कार बदल देती हैं, जैसे मम्मा। आप उनका इतिहास देखें और बाबा क्या कहते हैं। एक साधारण कन्या बिना धन के आई और वे ज्ञान ज्ञानेश्वरी, ज्ञान की देवी बन गई, और सबसे कम समय में उन्होंने अपने संस्कारों को बदलकर स्वयं को स्वर्णिम युग की पहली धन की देवी का अपना पद पाया। तो बहुत से हैं जो चले गए, 80 वर्ष नहीं, अगर अधिक समय लग रहा है तो इसका अर्थ है हम संस्कारों को परिवर्तन करने में धीमे हैं। यह कई कर्मों के हिसाब किताब हैं। मुझे सेवा भी करनी है, मुझे बहुत कुछ करना है, यज्ञ को भी चलना है। ऐसे नहीं है कि 80 वर्षों में कोई नहीं बदला है, संस्कार नहीं बदले हैं। ब्रह्मा बाबा स्वयं ही 1969 में चले गए और उन्होंने अपने स्वयं के संस्कार बदले और हमें भी अपने संस्कार बदलने में मदद कर रहे हैं। सभी एडवांस पार्टी के लोगों ने भी परिवर्तन किया है। हमें देखना है कि हमें कलयुग के अंतिम दिन की प्रतीक्षा नहीं करनी है। कुछ लोग पूछते हैं कि कितना समय बाकी है, जनता हमसे पूछती है। मूलतः बाबा कहते हैं, आपको इन बातों की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करनी चाहिए। इसका अर्थ है आखिरी दिन भी सभी ने अपने संस्कार नहीं बदले होंगे। यह व्यक्तिगत पुरुषार्थ है और यही हमें नंबरवार बना देता है। एरिक भाई, लेकिन बहुत वर्ष पूर्व का क्या आप सोचते थे कि आप परिवर्तन देखेंगे? अभी हम बहुत पूर्वजों को जाता हुआ देखते हैं और एडवांस पार्टी का हिस्सा बन रहे हैं। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं कि इस जन्म में परिवर्तन के दौर को देखना चाहेंगे या दूसरे शरीर में जाने की कोई बात नहीं? ब्रजमोहन भाई, भाई मैं ड्रामा को बहुत विस्तृत रूप से देखता हूँ और प्रत्येक आत्मा का अपना पार्ट है। उदाहरण के लिए ऐसा नहीं है कि दादी जानकी ने, दादी प्रकाशमणि जितना पुरुषार्थ नहीं किया, इसलिए अभी भी शरीर में है। बहुत से जटिल अंश हैं, तो मैं कभी भी नहीं सोचता यह या वह। मैं अपने बेहतरीन क्षमता से अपना पार्ट बजाता हूँ और जो भी ड्रामा में नूंद होगा वह होगा। तो मैं कभी चयन करता या छांटता नहीं हूँ और ना ही यह मेरे हाथ में है। बहुत सी बातें हैं जो नियंत्रित करती हैं, क्योंकि यह एक जन्म के संस्कार नहीं है, यह आधी सृष्टि चक्र के संस्कार हैं, जिनको बदलने की आवश्यकता है। तो इसलिए मैं नहीं सोचता कि क्या करूं, मैं अपना बेहतरीन करने की कोशिश करता हूं, अगर मैं इस प्रकार या उस प्रकार चाहूं भी। दादी प्रकाशमणि ने बाबा को कहा कि उन्हें दूसरा जन्म नहीं लेना, और जब उन्होंने शरीर छोड़ा तब बाबा को विशेष रूप से उन्हें विवरण देना पड़ा कि किस कारण से आपने दूसरा जन्म लिया है, अन्यथा आप दूसरा जन्म न लेने का अधिकार रखते हो। और फिर जब बाबा ने समझाया तो उन्होंने दूसरा जन्म ले लिया। तो इस हद तक यह सूक्ष्म है, पेचीदा है। एरिक भाई, बिल्कुल सही। ब्रजमोहन भाई, कुछ भी इस वेबिनार सीइंग इनटू बीइंग पर बताना चाहेंगे, जिससे हम भविष्य के बारे में सोचते हैं, अभी हम कहाँ हैं और भविष्य में कहाँ होंगे, और कोई पहलू जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए या सुनना चाहिए? ब्रजमोहन भाई, मेरा सादा सा सूत्र है, हमें इस बात में विश्वास करना चाहिए कि यह ड्रामा यथार्थ है। सही तो सही है ही, लेकिन गलत भी सही है। ओके एरिक भाई, ओके यह बहुत बहुत अच्छा है। ब्रजमोहन भाई, ओके भाई शुक्रिया। एरिक भाई, शुक्रिया ब्रजमोहन भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम सच में इसकी सराहना करते हैं और इन सब सवालों का जवाब देने के लिए शुक्रिया ब्रजमोहन भाई, शुक्रिया यह शुभ अवसर देने के लिए। ओम शांति।